सुबह के लगभग 10 बजे के करीब आहान की आंख खुली। चाहत भी थककर सो चुकी थी। तनु ने निशा का इलाज शुरू करवा दिया था, इसलिए चाहत को हॉस्पिटल जाने की टेंशन नहीं थी। उठने के बाद आहान को रात को क्या हुआ था उस बारे में याद नहीं आया। आहान ने महसूस किया कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। फिर आहान ने साइड में देखा तो चाहत भी उसके पास वहीं पर सोई हुई थी। उसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। आहान ने देखा कि चाहत के गर्दन पर बहुत सारे लव बाइट के निशान बने हुए थे। उसने इधर उधर देखा तो दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे। आहान ने अपना सिर पकड़ा और रात को जो भी हुआ था उसके बारे में याद करने की कोशिश करने लगा। डॉल मेरे साथ यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस हाल में, आहान ने सिर पकड़कर कहा और सब याद करने लगा। जल्द ही आहान को सब कुछ याद आ गया था कि कैसे रात को चाहत उसके कमरे में आई थी। वो उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी और अचानक ही उसके पास आने पर एक मोमेंट क्रिएट हो गया जिसमें आहान और चाहत के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं। साथ ही आहान को ये भी एहसास हुआ कि उनका रिश्ता कोई प्यार भरा रिश्ता नहीं था। जो भी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं चाहत की मजबूरी छुपी हुई थी और आहान का गुस्सा। सब याद आने पर आहान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और चाहत की तरफ देखा। वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। आहान ने ब्लैंकेट उठाया तो चाहत की पूरी बॉडी पर लव बाइट के निशान बने हुए थे, जो कुछ लाल तो कुछ नीले हो चुके थे। चाहत को उस हाल में देखकर आहान ने उसे तुरंत ब्लैंकेट उड़ा दिया। वो समझ गया था कि उसने ही ये सब किया है। आहान ने अफसोस भरे भाव में कहा, आई एम सो सॉरी डॉल, तुम्हें मेरी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ा। तुम्हें इस तरह मुझे सब करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। पता नहीं तुमने रात को क्या कुछ नहीं झेला होगा। आहान अपने गिल्ट में डूबा था। तभी उसे चाहत की सिसकी सुनाई दी। इसी के साथ आहान का ध्यान टूटा। उसने देखा चाहत की आंखें खुल रही हैं। वो उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि चाहत चाहकर भी नहीं उठ पा रही थी। चाहत को इस तरह उठने की नाकाम कोशिश करते देखकर आहान ने कहा, रहने दो डॉल, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि उठकर दो कदम भी चल सको। तुम्हें पेन हो रहा होगा। चाहत ने आहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आहान ने अब तक कपड़े नहीं पहने थे। उसकी ऊपर की बॉडी पूरी तरह विजुअल थी। उसे इस तरह देखकर चाहत ने अपनी नज़रें फेर ली और उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। चाहत को रोते हुए देखकर आहान ने कहा, प्लीज़ इस तरह रो तो मत डॉल। जानता हूँ उस मोमेंट में मुझसे एक भूल हो गई, लेकिन तुम्हें भी मुझे सब करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। इनफैक्ट तुम्हें मेरे पास ही नहीं आना चाहिए था। सॉरी बट नॉट सॉरी डॉल, सब तुम्हारे कॉन्सेंट के बाद ही हुआ है। चाहत ने आहान की तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, आहान मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। वो मरने वाली है आहान, मेरा उनके अलावा कोई नहीं है। प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। आप जैसे कहोगे मैं वैसा कर लूँगी, पर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। चाहत की बातें सुनकर आहान का गिल्ट अचानक गुस्से में बदल गया। उसने चाहत की तरफ सर्द निगाहों से देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, अच्छा तो तुम यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी। क्या तुमने पैसों के लिए खुद को बेच दिया है डॉल? क्या पहले भी पैसों के लिए ये सब? आहान बोलते हुए रुक गया। उसने देखा चाहत जोर जोर से रोने लगी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आहान, ये सब करती तो किसी भी छोटी नौकरी के लिए बार बार इंटरव्यू देने नहीं जाती। रात को आपने मेरे साथ इतना कुछ किया था, इतना दर्द तब भी नहीं हुआ जितना आपकी बातों से हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, चाहत ने रोते हुए कहा। आहान की बातों से वो समझ गई थी कि आहान उसकी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि वो उसे गलत समझ रहा है। अपनी माँ के लिए चाहत ने आहान का गुस्सा और उसकी ज़बरदस्ती तक सहन की थी, लेकिन अब आहान उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा था। ये सुनने के बाद चाहत को एक मिनट भी वहाँ रुकना सही नहीं लगा। चाहत ने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और जैसे तैसे उठी। उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी और साथ में दर्द भी हो रहा था, पर आहान की बातें सुनने के बाद वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। चाहत कुछ कदम चलने के बाद ही लड़खड़ाने लगी। वो नीचे बैठ गई और अपने कपड़े उठा रही थी। आहान ने बेडशीट को टॉवल की तरह बांधा और चाहत के पास आकर कहा, खुद को इस तरह तकलीफ मत दो डॉल, तुमने मेरा गुस्सा शांत किया है। वजह चाहे कोई भी रही हो, तुम्हें तुम्हारी एक रात की कीमत मिल जाएगी। चाहत को आहान की बात पर गुस्सा आ रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा। चाहत ने चुपचाप अपने कपड़े पहने और धीरे धीरे चलती हुई बाहर जाने लगी। बाहर तनु ने उसे देखा तो चाहत की हालत देखकर वो समझ गई थी कि रात को उनके बीच क्या हुआ होगा। तनु जल्दी से दौड़कर चाहत के पास आई। वो उसे संभालते हुए बोली, चाहत तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, इस वक्त तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए, तुम ठीक से चल तक नहीं पा रही हो। तुम रेस्ट करो, मैं आहान से बात करके आती हूँ। मुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना और ना ही किसी से बात करनी है। उन्हें ये लगता है कि मैंने पैसों के लिए ये सब किया है। वैसे भी गलत क्या है, मुझे मेरी मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और उसके लिए मैं आहान के पास आई। वो सही कह रहे हैं, मैंने पैसों के लिए खुद को बेच दिया, तभी एक रात की कीमत लगा रहे हैं, चाहत ने खुद को मजबूत करके कहा। उसने तनु को वो सब बता दिया जो कमरे में हुआ था। तनु समझ गई थी कि जरूर ये सब आहान ने उसे कहा होगा। चाहत की बातें सुनने के बाद तनु को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। वो चाहत को रोकना चाहती थी लेकिन चाहत वहाँ से बाहर चली गई। बाहर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि चाहत धीरे धीरे लंगड़ा कर चल रही थी। ऊपर से उसके हाथों और गले पर बहुत सारे लव वाइट के निशान बने हुए थे। चाहत का टॉप छोटा होने की वजह से उसका थोड़ा पेट भी दिख रहा था। उसकी कमर पर भी एकदम निशान बने हुए थे। अच्छा, तो रात को इस वजह से इस लड़की को यहाँ पर बुलाया गया था। चाहत को देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे वाले से कहा। उनकी बातें सुनकर चाहत की आंखों से आंसू बह गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चाहकर भी वहां से दौड़कर नहीं जा सकती थी। चाहत ने अपनी स्कूटी ली और हॉस्पिटल जाने के बजाय सीधे घर जाने के लिए निकल गई। चाहत के जाने के बाद तनु आहान के पास गई। तब तक आहान ने कपड़े पहन लिए थे। आहान को देखते ही तनु ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अब तक तुम्हारे गुस्से और गलत कामों में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। तुम मेरे पेशेंट ही नहीं बल्कि दोस्त भी थे। ये सोचकर कि एक दिन तुम ठीक हो जाओगे, मैंने तुम्हारी जिद पूरी की। आज मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आ रहा है आहान ओबेरॉय। लगता है थोड़ी ही देर में डॉल ने मेरी काफी सारी बुराई कर दी है तुम्हारे आगे, आहान ने सिर हिलाकर कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तनु उस पर गुस्सा कर रही है।
आहान का गुस्सा शांत करने वाली तनु आज खुद गुस्से में थी। उसने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़की इस कमरे में ये सोच कर गई थी कि तुम उसके साथ ये सब करोगे? या तुम कितनी लड़कियों के पास आने पर खुद का कंट्रोल खोकर उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो? वो तुम्हारा गुस्सा शांत करने गई थी ताकि तुमसे बात कर सके कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में पड़ी है। याद करो आहान ओबेरॉय, तुमने उसे वादा किया था कि जब भी जरूरत पड़े मेरे पास आ सकती हो, और वो उसी के लिए तुम्हारे पास आई थी। वो यहां पैसे कमाने नहीं बल्कि पैसे लोन पर लेने आई थी। क्या किया तुमने उसके साथ? रात को वो सब करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो सुबह उसे अपनी बातों से हर्ट किया। वो जो ठीक से चल नहीं पा रही है वो अपने घर गई है। सोचो रास्ते में उसे कितने लोगों ने उस हाल में देखा होगा और उसके बारे में क्या कुछ नहीं सोचा होगा। रास्ते का छोड़ो, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी सिक्योरिटी गार्ड की फौज बेवकूफ नहीं है। तनु ने अपने गुस्से में आहान को काफी कुछ सुना दिया और फिर वहां से चली गई। तनु के जाने के बाद आहान को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सब कुछ वहीं पर छोड़ा और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर चाहत के पीछे जाने के लिए निकल गया।